So yes, we've been looking at we are looking at the 7 weeks of the Buddha's enlightenment.
तो हम बुद्ध के जो निर्वाण के जो 7 हफ्ते थे उसके बारे में हम देख रहे थे.
And we're seeing that the Buddha went through a series of experiences.
और हम देख रहे थे कि बुद्ध अपने अनुभव की एक श्रृंखला से गुजर रहे थे.
The enlightenment wasn't a single event.
क्योंकि जो निर्वाण की जो प्राप्ति है वो केवल एक ही घटना नहीं है.
So we're trying to understand that more deeply and go into it more fully.
तो हम इसे बहुत अच्छी तरह देखने की कोशिश कर रहे थे और गहराई से इसमें जाने की कोशिश कर रहे थे.
I think I'm going to stop until everybody's silent. It's difficult to speak when people are speaking in the audience.
जब आप लोग आपस में बातें करते हैं तो मुझे बोलना कठिन होता है, इसलिए मैं थोड़ी देर रुकता हूँ.
And we're dealing with something very deep, very serious.
क्योंकि हम बहुत ही गंभीर और विषयों के बारे में बात कर रहे हैं.
So yes, we're looking at these experiences that the Buddha had at Buddhagaya.
तो बोधगया में जो बुद्ध के जो अपने अनुभव थे उन अनुभव के बारे में हम बात कर रहे थे.
And we saw yesterday that he experienced for 1 week the bliss of emancipation.
और हमने यह देखा कि पूरे एक हफ्ता वह जो निर्वाण में गए उस निर्वाण के बारे में अनुभव कर रहे थे.
Not nirvan, but emancipation, vimukti. Yeah.
जो उनकी जो विमुक्ति थी उस विमुक्ति को वो अनुभव कर रहे थे.
He was free.
क्योंकि वो पूरी तरह मुक्त थे.
Nothing could disturb him, nothing could bother him anymore.
कोई भी चीज उनको विचलित नहीं कर पा रही थी, किसी भी चीज से वह अविचलित नहीं होते थे.
You know what it's like for us.
आपने देखा हमारे साथ अक्सर क्या होता है.
Well, for instance, during this retreat, you have perhaps had already some moments of real peace.
शिविर के दौरान आप लोगों को शायद यह अनुभव आया हो कि आप गहरी शांति का अनुभव ले रहे हो.
But it doesn't last.
लेकिन यह ज्यादा देर तक टिकती नहीं.
Something happens and you're disturbed.
कुछ तो भी बात हो जाती है और हम विचलित हो जाते हैं.
Somebody speaks to you roughly.
हो सकता है किसी ने आपके साथ थोड़ा सा गर्मी से बात की हो.
It's difficult to get your food or something like that.
हो सकता है आपको खाना खाने के लिए या वो लेने के लिए आपको कुछ कठिनाई आई हो.
Or there's talking in your dormitory at night.
या रात में आपके आपका जो आवास है वहाँ पे लोग बहुत बातें कर रहे हैं.
So you can't sleep.
तो आप ठीक से सो नहीं पाते हैं.
And your peace has gone.
और आपकी जो शांति है वो चली जाती है.
It's not like that for the Buddha.
लेकिन बुद्ध के साथ ऐसा कुछ नहीं होता.
Nothing can disturb his deep, deep peace.
उनकी जो असीम गहरी जो शांति है उसको कोई भी विचलित नहीं कर सकता.
That's why we say he's free.
इसलिए हम कहते हैं कि वे मुक्त है.
He's free from anything that can bother him.
वह उन सभी चीजों से मुक्त है और कोई भी चीज उन्हें विचलित नहीं कर सकती.
There's no reaction in him.
उनमें कोई प्रतिक्रिया नहीं होती.
He's just free, he's just calm, he's just still.
वह पूरी तरह मुक्त है, शांत है.
So that's what has been happening for the last week.
तो पिछले हफ्तों से यही कुछ हम बातें कर रहे थे.
That's what we were remembering yesterday.
यही हम कल बातें करने की कोशिश कर रहे थे.
He had his victory over Mara.
उन्होंने मार के ऊपर अपनी जीत हासिल की.
He saw the real nature of things.
उन्होंने चीजों का सही स्वभाव देखा.
And he was free.
और वे मुक्त हो गए.
So he sat continuously for 1 week under the tree.
तो पूरी तरह एक हफ्ता वह बोधि वृक्ष के नीचे बैठे थे.
And then he got up and he walked just 40 or 50 meters.
और वह उठे और वहां से जो 50 मीटर की जो दूरी है उस तरफ चल पड़े.
He walked up to that little hill that we visited at the end of our visit today.
तो आज हमारी जब पूजा खत्म हुई और हमने जो छोटी सी जो पहाड़ी पे गए वहां पे वो गए थे.
And he just sat there and looked at the Bodhi tree.
वहां पे वो बैठे और फिर उन्होंने बोधि वृक्ष को देखा.
And remember that at that time there was no temple, no little stupas and so on.
अब यह आप कल्पना कीजिए कि उस वक्त वहाँ पे वो मंदिर नहीं था या कोई भी दूसरे स्तूप जो वहाँ पे अभी है वो वहाँ नहीं थे.
There was no bazaar.
वहाँ पे कोई बाजार नहीं था.
There were no rickshaws.
रिक्शा भी नहीं थे.
There were no stalls.
और वहाँ पे जो दुकानें हैं वो भी नहीं थी.
It was just a jungle.
केवल वहाँ घना जंगल
था. And the Buddha just sat on that little hill and looked at the Bodhi tree.
और वो छोटी सी जो पहाड़ी है वहाँ पे बुद्ध बैठे और उन्होंने उस वृक्ष को देखा.
And the tradition is that he sat without blinking.
और परंपराओं द्वारा ऐसा हमें ज्ञात है कि बिना पलक झपकाए उन्होंने उस वृक्ष को देखा.
Probably this is poetry again.
फिर से मैं बता रहा हूँ कि ये काव्यात्मक अभिव्यक्ति है.
If you don't blink, the eye loses its moisture and you won't be able to see.
क्योंकि अगर आप अपने पलके झपकाएंगे नहीं तो पानी आएगा फिर आप देख नहीं पाएंगे.
But what was meant is that he looked with deep concentration, with unwavering attention.
इसका अर्थ यही है कि उन्होंने गहरी एकाग्रता के साथ उस वृक्ष को देखा और उनका जो ध्यान है जरा भी उससे हिला नहीं.
And this to me is one of the most interesting of all the incidents that took place there.
तो यह काफी रुचकर बातें हैं मेरे लिए भी कि जो जो भी घटनाएं वहां पे हुई.
This extraordinary human being who'd broken all the bonds of humanity just looked at the tree.
यह एक अप्रतिम ऐसे मानव है जिन्होंने मानवता की जो सारे जो बंधन थे उन्होंने उससे वह मुक्त हो गए थे और उन्होंने उस बोधि वृक्ष को देखा.
And he looked with gratitude.
और उन्होंने देखा पूर्ण कृतज्ञता के साथ.
He looked at it to thank the tree for sheltering him.
उन्होंने इसलिए देखा मानो कि वो उस बोधि वृक्ष का आभार अदा कर रहे थे जिसके लिए बुद्ध को उन्होंने निवास दिया.
That tree had had shaded him from the sun.
क्योंकि उस वृक्ष के परछाई के नीचे वह सूर्य प्रकाश से बचे.
That tree had sheltered him from the rain, from the wind.
जो बारिश थी हवाएं थी उससे उनका संरक्षण हुआ.
The trunk of the tree had sort of supported him.
और जो उसका जो क्या है कि बूंदा जो है उस बूंदे पे उनको आधार मिला उनके पीठ के लिए.
His leaves hanging down had sheltered him.
और जो उनके पत्तियां थे वो पत्तियों से उनको सुरक्षितता मिली.
And he felt great, great gratitude to the tree.
और वो पूरी तरह उस पेड़ के प्रति कृतज्ञ थे.
Now this is quite strange.
अब यह एक विचित्र बात है.
A tree is just a tree.
अब वैसे देखा जाए तो पेड़ तो मानो एक पेड़ ही है.
That's what we think.
वैसा ही हम सोचते हैं.
But when you think about it a bit further, you think that a tree is a living being.
लेकिन अगर और हम एक कदम आगे बढ़ के अगर सोचते हैं तो पेड़ भी एक सजीव है.
It's an extraordinary living organism.
यह एक अप्रतिम ऐसा सजीव है.
And these Bodhi trees, they live to immense age.
और यह जो बोधि वृक्ष है यह कई सालों तक जिंदा रहे.
So when you're looking at that Bodhi tree there now, it's I think 300 years old. 200 years old, yeah.
अभी जो हम बोधि वृक्ष अभी जो देख रहे हैं यह 200 साल पुराना है.
And you're looking at a living organism of tremendous age.
और हम ऐसे किसी सजीव को देख रहे हैं जो इतने सालों तक जीवित रहा.
And a tree has a sort of consciousness.
और जो पेड़ होता है उसमें कुछ चेतनाएं भी होती है.
It's hard to understand that.
अब इसको समझना काफी मुश्किल है.
Of course, it's not got a consciousness like our consciousness.
अब निश्चित रूप से यह जो चेतना है वह हमारी चेतनाओं जैसी नहीं होती.
It hasn't got a mouth and ears.
अब इसको कोई मुंह और कान नहीं होते.
But it's a living thing.
लेकिन यह एक सजीव है, जिंदा है.
And every living thing we have some affinity with.
और हर जो जीवित चीज है उसके साथ हमारी कुछ करीबी होती है.
And the Buddha clearly felt a close kinship with that tree.
और बुद्ध ने काफी करीबी उस पेड़ के साथ महसूस की.
So yes, he sat and gazed at that tree with deep gratitude to it.
तो वह पेड़ को देख रहे थे पूर्ण कृतज्ञता के साथ.
Now of course the tree in a sense represents something more than itself.
तो जो पेड़ है वह अपने आप से काफी सारी बातें कहता है.
Well, the Buddha was gazing at the tree with gratitude. It became the representative for everything that has supported him.
जब वो बुद्ध पेड़ को कृतज्ञता के साथ देख रहे थे, इसका वास्तविक अर्थ यही है कि जिन जिन चीजों से उनको मदद मिली उसके प्रति वह कृतज्ञता व्यक्त कर रहे थे।
Throughout his life he'd had help from so many people.
सारे जीवन भर उनको कई लोगों से मदद मिली।
His mother had given him birth.
मान लीजिए माँ ने उनको जन्म दिया।
His aunt had nurtured him.
उनकी जो मौसी थी उन्होंने उनकी देखभाल की।
His father had cared for him.
पिताजी ने उनको पढ़ाया लिखाया बड़ा किया।
He'd had many teachers, both secular and teachers of meditation.
तो ध्यान के और भी समरसता के जो भी उनके बहुत सारे ऐसे शिक्षक थे।
Just before his arrival at the tree, he'd received food from Sujata.
बोधि वृक्ष के पास आने से पहले ही उनको सुजाता ने खीर दी थी।
He'd received that pile of kusha grass from the farmer Swastika.
वो जो किसान था, उस किसान से उन्होंने कुश नाम का जो घास है वह लिया था।
So the tree came to represent everything that had nurtured him, that had sheltered him, that had cared for him.
तो वह कृतज्ञता वृक्ष के साथ यही थी कि जो जो भी चीजों की उनको मदद हुई, जिनका भी उनका संगोपन हुआ जिन जिन लोगों के द्वारा।
And he just gazed at it, deeply grateful for everything that had supported him to gain this wonderful enlightenment.
तो उन्होंने सभी चीजों के लिए गहरी कृतज्ञता व्यक्त की जिन जिन चीजों से उनको आधार मिला।
It seems quite surprising. This is the first thing that he did after his enlightenment.
अब यह काफी आश्चर्यकारक बात है कि यह उन्होंने पहली बात की अपने संबोधि प्राप्ति के पश्चात।
Some people might say, well, wasn't the Buddha beyond emotion? Some people might say, how could the Buddha experience emotion?
कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं कि बुद्ध कैसे भावनाओं को अनुभव करते हैं।
After all, he was enlightened. He was not attached.
क्योंकि वैसे देखा जाए तो वह तो उन्होंने निर्वाण की प्राप्ति की थी, वह आसक्त नहीं थे।
So why should he feel any gratitude?
तो क्यों वह कृतज्ञता व्यक्त करते हैं?
That's what some people might say.
ऐसे कुछ लोग कह सकते हैं।
But it's not like that.
लेकिन यह उस तरीके से नहीं है।
There is, as it were, an emotional side to enlightenment.
यह जो है उनका एक भावनिक भाग है अपने संबोधि प्राप्ति का।
It is quite different from our emotion.
यह निश्चित रूप से भिन्न है अपनी भावनाओं से।
It's on another level to our emotion.
यह दूसरे स्तर पे है अपने भावना की तुलनाओं में।
It's as if all our emotion is to do with us, ourselves.
बहुत बहुत बार ऐसे होता है कि जो भावनाएं जो है हमारी वह केवल हमारे लिए होती है।
It's as if even when we're grateful, we're often more to do with ourselves than with the other person.
बहुत बार जो भावना है यह हमारे साथ जुड़ी होती है दूसरे लोगों की तुलना में।
But the Buddha, there's no self at all.
लेकिन बुद्ध में ऐसा कोई भी स्वयं या स्व नहीं होता है।
He just gone completely out of himself.
अपने स्वयं से पूरी तरह वह मुक्त हो चुके होते हैं।
He feels deep gratitude and appreciation to the other person.
और लोगों के लिए उनके मन में गहरा आदर भाव और कृतज्ञता होती है।
So it's very important for us to realize.
तो यह बहुत महत्वपूर्ण है हमें समझने के लिए।
You know, so often people talk about enlightenment in terms of wealth, for instance, vipassana.
अक्सर लोग यह संबोधि की बात करते रहते हैं, मान लीजिए विपश्यना है।
They talk about prajna.
वह प्रज्ञा की बातें करते हैं।
Well, even they talk about bodhi.
और वो बोधि की भी बातें करते हैं।
And these are definitely important aspects of enlightenment.
निश्चित रूप से यह संबोधि के बहुत महत्वपूर्ण आयाम है।
But they're only talking about enlightenment from one point of view.
लेकिन हमेशा ही वह संबोधि की उसी तरीके से बात करते हैं मानो कि ये केवल वही एक आयाम है।
They're talking about it from the point of view of wisdom.
वह मान लीजिए कि जैसे प्रज्ञा के माध्यम से संबोधि की बात करते हैं।
But we need to talk about enlightenment also from the point of view of compassion.
लेकिन संबोधि को करुणा के माध्यम से भी देखना आवश्यक है।
We need to talk about it from the point of view of, if you like, enlightened emotion.
इसको ऐसा कह सकते हैं कि जो संबोधि प्राप्त भावनाएं हैं, उस भावनाओं के दृष्टिकोण से देखना आवश्यक है।
So the Buddha is definitely not beyond emotion.
तो निश्चित रूप से भावना से परे वैसे बुद्ध नहीं होते हैं।
But all his emotion has no self in it.
लेकिन उनकी जो भावनाएं हैं, उन भावनाओं में कोई स्व नहीं होता, कोई स्वयं नहीं होता।
So I'm going to say quite a bit more about that in a moment.
अब उसके बारे में मैं आने वाले पल में कुछ बातें करने वाला हूँ।
I'm going to talk about the emotions that a Buddha might feel.
मैं उन भावनाओं के बारे में बात कर रहा हूँ जो बुद्ध ने महसूस किए होंगे।
But I want to say a little bit more about gratitude.
लेकिन मैं और भी कुछ बातें कहना चाहूंगा कृतज्ञता के बारे में।
Of course, that is an emotion that the Buddha felt.
निश्चित रूप से यह भावनाएं थे जो बुद्ध ने स्वयं महसूस किए।
So when you go to that place where the Buddha sat, you feel gratitude.
जहां बुद्ध बैठे थे, अगर हम वहां जाते हैं, तो हम कृतज्ञता का अनुभव करते हैं।
You think of what the Buddha gained.
हम सोचते हैं कि बुद्ध ने क्या पाया।
You think of the struggle that the Buddha went through.
जो संघर्ष से बुद्ध गुजरे हैं, उसके बारे में हम सोचते हैं।
You think what the Buddha has given you.
हम यह भी सोचते हैं कि बुद्ध ने हमें क्या दिया।
You think what the Buddha has given the whole world.
और हम इसके बारे में सोचते हैं कि बुद्ध ने समूचे विश्व को क्या प्रदान किया।
You think of that Dhamma revolution, that Dhamma Kranti that he launched there.
और हम इसके बारे में भी सोचते हैं कि जिस धम्म क्रांति की नींव बुद्ध ने वहां रखी।
You think of that Dhamma Kranti that Dr. Babasaheb Ambedkar renewed 50 years ago.
और हम उस धम्म क्रांति के बारे में भी सोचते हैं जो 50 साल पहले डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने जिसे पुनर्जीवित की।
So you feel deep gratitude.
तो हमें यह गहरी कृतज्ञता वहाँ महसूस होती है।
It's so important to feel gratitude.
यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम कृतज्ञता का अनुभव लें।
You could say that if you can't feel gratitude, you can't receive anything.
ऐसा कह सकते हैं हम कि अगर हम कृतज्ञता का अनुभव नहीं करते हैं, तो किसी चीज को हम स्वीकार नहीं सकते हैं।
Because gratitude is your recognition of the value of what you've been given.
क्योंकि कृतज्ञता का अनुभव यह इस चीज की क्या कह सकते हैं कि पावती है जिन चीजों को हमने स्वीकारा।
I remember when I was given this kesa.
अब मैं याद करता हूँ जब मुझे यह केसा दिया गया था।
Actually, this is not the original kesa because that was 35 years ago, so the old one is fallen apart.
तो अब यह वही केसा नहीं है क्योंकि मैंने 35 साल पहले लिया था, वो अभी नष्ट हो गया।
But well, the ancestor of this kesa, I remember being given it.
लेकिन इस केसा को देख के मुझे उसकी याद आती है।
I remember being given my name.
मैं यह भी याद करता हूँ जब मुझे मेरा नाम दिया गया था।
I remember Bhante saying, well, your name is Subhuti.
मुझे अभी भी याद है कि जब भंते ने मुझे कहा था कि आपका नाम सुभूति है।
I remember the way he said it, Subhuti.
और मुझे यह भी मालूम है कि कैसे उन्होंने कहा था सुभूति।
And I remember my almost overwhelmed with gratitude.
और तब मैं कृतज्ञता से पूरा भर गया था।
I felt I'd been given the biggest present of my whole life.
और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मुझे जीवन में सबसे मूल्यवान ऐसी भेंट दी गई है।
And I remember just sitting afterwards reflecting on my feeling of gratitude.
और जब मैं बैठा हुआ था तो तब मेरी जो कृतज्ञता पूर्ण जो भावनाएं थी उसके ऊपर मैं चिंतन कर रहा था।
And I wanted to express that gratitude to Bhante.
और मैं यह जो कृतज्ञता है मैं भंते के लिए अभिव्यक्त करना चाहता हूँ।
But I just couldn't find words.
लेकिन मेरे पास तब शब्द नहीं है।
So all I could say to him was, I cannot find words to express my gratitude.
और जब मैंने भंते के पास गया बोला तो मुझे ऐसे लगा कि मेरे पास कोई शब्द नहीं है यह व्यक्त करने के लिए।
So you feel gratitude because you recognize the value of what you've been given.
हम कृतज्ञता का अनुभव इसलिए कर सकते हैं क्योंकि जो हमें दिया गया है उसके मूल्यता को हम जानते हैं।
Well, let's take, you know, the first person you need to have gratitude to.
तो आइए देखते हैं कि कृतज्ञता कैसे व्यक्ति में होती है।
Well, your mother.
जो पहला व्यक्ति है वह होती है माँ।
She gave you life.
अपने माँ ने हमें जीवन दिया है।
She cared for you.
उसने हमारी देखभाल की है।
In most of our cases, our mother nurtured us for the first years of our lives.
हमारे जो शुरुआती जो वर्ष होते हैं हर माँ अपने बच्चे को पढ़ाती है बढ़ाती है।
She gave us the basis for a human life.
एक मनुष्य के जीवन की जो बुनियाद है वह माँ हमें देती है।
And of course our fathers, as we grew older, they contributed more and more to that human life for us.
और जैसे-जैसे हम बड़े होते हैं, वैसे-वैसे हमारे पिताजी भी उसमें योगदान करते हैं।
So you really appreciate your parents when you recognize the importance of your human life.
जैसे ही हम मानवीय जीवन का महत्व जानते हैं, वैसे ही कृतज्ञता हम अपने माता पिताओं के लिए व्यक्त करते हैं।
So gratitude only comes when you recognize the value of what you've got.
तो कृतज्ञता वहीं से आती है जब हम उन मूल्यों को जानते हैं क्या हमें दिया गया है।
If you don't feel gratitude, you will not recognize the value.
अगर हम कृतज्ञता महसूस नहीं करते हैं, इसका मतलब उसके मूल्य को हमने जाना नहीं है।
I'm afraid that in the modern West, ingratitude is quite common.
अब मुझे इस बात से गहरी चिंता होती है कि जो अकृतज्ञता है, यह आधुनिक पश्चिमी देशों में काफी है।
This is one of the things we really notice when we come to India.
यही बात हम निश्चित रूप से देखते हैं जब हम भारत में आते हैं।
People are so grateful.
लोग बहुत ही क्या होते कि कृतज्ञता पूर्ण होते हैं।
Well, for instance, if you give a talk,
अब मान लीजिए आपने प्रवचन दिया।
You may not give a particularly brilliant talk.
मान लीजिए कि आपने बहुत ही अच्छा भाषण नहीं भी दिया हो।
But you know, you say something about the Dhamma.
लेकिन कुछ तो भी बात आप धम्म के बारे में कहते हैं।
And people express so much gratitude.
और लोग बहुत भारी मात्रा में यानी क्या है कि कृतज्ञता व्यक्त करते हैं।
It's just wonderful when you come to India in this way.
अब इस तरीके से देखा जाए तो बड़ा आश्चर्यकारक है भारत में आना।
In England, you give a talk.
अब इंग्लैंड में क्या होता है? मैं भाषण देता हूँ।
Afterwards, people say, okay.
लोग कहते हैं ठीक है।
And off they go.
और फिर वो चले जाते हैं।
Cheerio.
वो बोलते हैं ठीक है मिलेंगे।
That's all.
बस उतना ही।
Well, not everybody, of course.
अब निश्चित रूप से हर व्यक्ति वैसे नहीं होते हैं।
But what it means is they haven't really appreciated the value of what they've been given.
इसका अर्थ यही है कि जो उनको दिया गया है उसके मूल्य को वह जानते नहीं है।
And if you don't appreciate the value of something, well, you don't take advantage of it.
और अगर आप उसका मूल्यांकन नहीं करते या उनके मूल्यों को नहीं जानते हैं, तो उसके फायदों के बारे में हमें पता नहीं चलता है।
Well, just imagine that I give Maitreya Nagarjun 1 crore rupees.
अब मान लीजिए कि सुबुद्धि ने मुझे 1 crore rupees दिया है।
And he just throws it away.
और वो उसे फेंक देते हैं।
He just thinks, oh, Subhuti's giving me some more trouble.
और वो सोचते हैं कि सुबुति मुझे और परेशानियां दे रहे हैं।
As usual, he's giving me trouble.
जैसे कि वो मुझे तकलीफें देते हैं।
He's giving me some work to do.
मुझे वो कुछ काम देते हैं।
Never mind.
ठीक है, कोई बात नहीं।
And so I can say, well, what did you do with that crore?
तो मैं कहूँगा कि आप उस करोड़ों रुपए के साथ क्या करेंगे?
No, what crore? I didn't see any crore rupees.
तो वो बोलेंगे मैंने ऐसा कोई करोड़ रुपया देखा नहीं है।
Because he didn't know what he'd got, he didn't feel any gratitude, and he wasn't able to use it.
क्योंकि वो उसके मूल्य को जानते नहीं है, इसलिए उस पैसों के प्रति वह कृतज्ञता व्यक्त नहीं करते।
Actually, I know if I gave him 1 crore rupees, he would use it very quickly and very well.
लेकिन मुझे पता है कि अगर मैं इसको 1 crore rupees दूंगा, तो ये बहुत जल्दी इस्तेमाल करेगा और बहुत अच्छी तरीके से करेगा।
By tomorrow, he'd have spent it.
हो सकता है कल के कल ये सारे पैसे खर्च कर दे।
And he would have spent nothing on himself.
और मुझे पता है कि 1 rupee भी अपने आप के ऊपर ये खर्च नहीं करेगा।
He'd have spent it on Dhamma.
वो सारा पैसा धर्म के ऊपर खर्च कर देगा।
He'd have bought a wonderful retreat center near Delhi.
वो क्या करेगा? दिल्ली के आसपास बहुत बड़ी शिविर केंद्र के लिए जगह खरीद लेगा।
This is our plan. But I'm sorry, no cross rupees.
यह हमारी योजना है, लेकिन अभी हमारे पास करोड़ों रुपए नहीं है।
But if you don't realize the value of something, you can't use it properly.
लेकिन आपको जो दिया गया है, आप उसके मूल्य को अगर नहीं जानते हैं, तो फिर आपको उसका महत्व समझ में नहीं आता है।
And if you don't express gratitude, well, people can't respond.
और अगर आप कृतज्ञता व्यक्त नहीं करते हैं, तो लोगों से क्या है कि उनकी उनका जो प्रतिक्रिया है वो आप लेते नहीं है।
So for instance, if you speak a little bit about the Dhamma,
अब मान लीजिए आप धम्म के बारे में कुछ बातें करते हैं।
And then people express gratitude for that.
और लोग उसके बारे में कृतज्ञता व्यक्त करते हैं।
Well, you feel drawn to express more.
और आपको ऐसे लगता है कि बहुत सारी बातें मैंने अभी कहनी चाहिए.
But if people say, okay.
लेकिन अगर लोग बोलते हैं कि चलो ठीक है.
You think, okay.
आपको भी लगता है कोई बात नहीं ठीक है.
And that's that.
और बस उतने ही तक वह सीमित रहता है.
So gratitude is very, very important if we are to take advantage of, to use for human purpose, for spiritual purposes, whatever we are given.
तो कृतज्ञता यह बहुत महत्वपूर्ण ऐसी भावना है जो भी हमें दिया गया है उसको महसूस करने के लिए, भले ही यह अपने भौतिक जीवन में हो या आध्यात्मिक जीवन में हो.
So in Buddhism we stress gratitude very much indeed.
तो बौद्ध धर्म में हम कृतज्ञता को बहुत गहरा महत्व देते हैं.
Every one of us has so much to be grateful for.
हम में से हर एक व्यक्ति बहुत कृतज्ञ है.
You know, we can spend so much time complaining about what's wrong.
हमेशा ही हम इस पे ज्यादातर समय बिताते हैं कि क्या चीजें गलत हुई.
But it's better to spend our time being grateful for what we've received.
लेकिन हमने हमेशा ही अपना समय इसमें बिताना चाहिए कि क्या-क्या चीजें हमारे साथ अच्छी हुई.
So many people have helped us in so many ways.
बहुत सारे लोग कई तरीकों से हमें मदद करते रहते हैं.
And our gratitude is our way of really appreciating what we've been given and those who've given it to us.
और हमारी कृतज्ञता इसके प्रति महसूस होती है कि हमें क्या दिया गया है, किस तरीके से हमें मदद हुई है.
This was true for the Buddha.
यही सत्य है बुद्ध के लिए.
He realized what he'd received.
वह इस बात से भली भांति परिचित है कि क्या उन्होंने पाया है.
He realized all the help that he'd received.
वो इस सब जो जो भी उनको मदद मिली है उसके बारे में वह भली भांति सजग है.
You know, we say often, and it's important to say, the Buddha did it by himself.
अक्सर हम ऐसा कहते हैं और यह कहना भी महत्वपूर्ण है कि जो कुछ भी बुद्ध ने किया अपने आप किया.
It was his own efforts that gained him enlightenment.
वह उनके स्वयं के प्रयास से संबोधि प्राप्ति के लिए.
And there's a very important sense in which this is true.
और बहुत तरीके से देखा जाए तो यह सत्य है.
But he probably could not have done it without so much help.
लेकिन शायद संभवतः यह सब चीजें वह नहीं कर पाते अगर किसी तरीके से उनको मदद नहीं होती.
He even needed that tree.
उनको कम से कम उस पेड़ की तो आवश्यकता थी.
So yes, you need to make the effort yourself.
निश्चित रूप से हमें हमारे प्रयास करने होते हैं.
But you're able to make that effort because you've got so much help, so much support.
और हम वह प्रयास करने में सक्षम होते हैं क्योंकि कई सारी मदद हमें मिलते रहती है.
So we should really follow the Buddha's example in this.
तो इस तरीके से सही मायने में हमने बुद्ध का जो उदाहरण है उसका अनुसरण करना चाहिए.
We should think of all those who've helped us throughout our lives and feel our deep gratitude to them.
हमने हमेशा ही उन सभी लोगों के बारे में गहराई से सोचना चाहिए जिन जिन लोगों ने हमें मदद की और उनके प्रति हमने कृतज्ञ होना चाहिए.
There's one Buddhist teacher who says you should even be grateful to your enemies.
और एक बौद्ध गुरु ऐसा भी कहते हैं कि आपने अपने शत्रु के लिए भी कृतज्ञ होना चाहिए.
And why should you be grateful to your enemies?
और हम क्यों अपने शत्रु के प्रति कृतज्ञ हो?
Because they've given you a chance to develop maitri.
क्योंकि शत्रु आपको यह अवसर देता है, मौका देता है आपके मैत्री का विकास करने के.
It's easy to feel maitri for your friend.
अब दोस्तों के लिए मैत्री महसूस करना आसान है.
It's not so easy to feel maitri for your enemy.
लेकिन शत्रु के लिए मैत्री का विकास करना या उसका अनुभव करना आसान नहीं है.
So your enemy challenges you to feel the highest and deepest kind of maitri.
तो यह जो शत्रु है यह आपको चुनौती देता है कि आप ऊंचे स्तर की मैत्री का अनुभव करें.
And you could also say that enemies often teach you about yourself.
और ऐसा कहते हैं कि जो शत्रु है हमेशा ही आपको अपने आप के बारे में पढ़ाने का अवसर देता है.
So yes, sometimes we should even be grateful to our enemies.
तो हाँ, इस तरीके से भी कभी कभी हमने हमारे शत्रु के लिए भी कृतज्ञ होने चाहिए.
But yes, maybe even the Buddha was grateful to Mara.
ऐसे देखा जाए तो फिर बुद्ध भी वो मार के लिए भी कृतज्ञ है.
Because of Mara's attack, the Buddha was able to gain freedom.
मार ने जो उनके ऊपर आघात किया उसके कारण ही बुद्ध मुक्ति का अनुभव कर पाए.
But yes, let's at least just say we need to follow the Buddha in this great example of gratitude.
तो यह महान कृतज्ञता का जो उदाहरण है वैसे ही हमने बुद्ध का अनुसरण करना चाहिए.
And for me this is one of the most wonderful and most beautiful things about these 7 weeks of the Buddha's enlightenment.
तो सात जो संबोधि के उनके सप्ताह है उसके बारे में यह मुझे काफी महत्वपूर्ण और रुचकर बात लगती है कृतज्ञता.
The Buddha sat for one whole week just experiencing gratitude.
केवल कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए बुद्ध 7 दिन वहां बैठे रहे.
So yes, this is one of the emotions that the Buddha feels.
और यह एक महत्वपूर्ण भाव है या भावना है जो बुद्ध ने वहां अनुभव की.
But there are other important emotions he feels.
लेकिन और भी दूसरी महत्वपूर्ण भावनाएं हैं जिसका उन्होंने अनुभव लिया.
Of course, there's Maitri.
स्वाभाविक है कि दूसरी बात है मैत्री.
Although in a way the Buddha doesn't experience Maitri.
वैसे देखा जाए तो बुद्ध मैत्री का अनुभव नहीं लेते हैं.
Because Maitri is what we feel for somebody who is, as it were, on the same level as us.
तो मैत्री का भाव वह भाव है जो हमारे स्तर पे हम महसूस करते हैं औरों के साथ.
And there's nobody on the same level as the Buddha.
और वैसे देखा जाए तो बुद्ध के स्तर पे समान स्तर पे उनके वक्त कोई भी नहीं था.
He's the highest being there is.
वह सबसे उच्च व्यक्ति थे उस वक्त के.
When the Buddha looks at beings, he feels karuna.
क्योंकि बुद्ध जब और सजीवों को जब देखते हैं तो वह करुणा महसूस करते हैं.
Karuna is maitri directed towards somebody who's suffering.
करुणा यह ऐसा मैत्री भाव है जो कोई दुखी है उसके लिए वह आता है.
If you have maitri and you see suffering, you feel karuna.
अब आप किसी को देखते हैं और उसके दुख को जब आप जानते हैं तो आपको करुणा का एहसास होता है.
You want them to be freed from their suffering.
क्योंकि आप यह चाहते हैं कि वह उन दुखों से मुक्त हो.
That's what karuna means.
यही करुणा का अर्थ है.
When you see those who are suffering, you want them to be free from that suffering.
जब आप किसी को दुखी देखते हैं तब आप यह चाहते हैं कि वह उस दुखों से मुक्त हो.
So we usually speak of the Buddha as experiencing karuna.
तो हम ऐसा बुद्ध को देखते हैं कि जैसे वह करुणा का अनुभव ले रहे हैं.
Of course he also experiences joy when he sees beings who are developing.
क्योंकि जब इसका भी वह आनंद लेते हैं जब वह देखते हैं कि सजीवों का विकास हो रहा है.
The Buddha, so to speak, when he sees us really making an effort and making some progress in our spiritual lives, he feels great joy.
अब कोई भी जीव या सजीव है यह जब आध्यात्मिक विकास करता है तो बुद्ध को उसका गहरा आनंद महसूस होता है.
He feels what we call mudita.
और उसे हम कहते हैं मुदिता.
Mudita is maitri directed towards somebody who is making progress, somebody who's happy.
मुदिता वह मैत्री भाव है जब कोई विकास करने के लिए लालायित होता है या उत्साहित होता है और उससे जो हमें आनंद मिलता है.
So yes, these are the three emotions the Buddha feels, at least in a certain sense.
तो किसी भी भाव से हम यह कह सकते हैं कि ये 3 प्रकार की भावनाएं थी जो बुद्ध ने महसूस की.
When he sees people who are as it were on the same level as him, other Buddhas, something like maitri will be there.
बुद्ध अगर अपने जैसे कोई और बुद्ध देखते हैं तो फिर उनके लिए वह मैत्री का अनुभव करते हैं.
When he's with his other arahat disciples, he'll feel maitri.
और उनके जो दूसरे अर्हत शिष्य जो थे उनको अगर वह देखते हैं तो फिर वह मैत्री का भाव महसूस करते हैं.
With most people he'll feel karuna.
बहुत सारे लोगों के लिए बुद्ध के मन में करुणा होती है.
With those who are making a real spiritual effort and making some progress in their lives, he'll feel mudita.
ऐसे कुछ लोग हैं जो अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रयास करते हैं और विकास करते हैं उनके लिए वह मुदिता भाव महसूस करते हैं.
These 3 states are known as Brahmaviharas.
तो यह 3 जो स्तर है उनको हम ब्रह्म विहार कहते हैं.
ब्रह्म here has nothing to do with the god Brahma.
ब्रह्म का यहाँ अर्थ किसी भी कोई जो ईश्वर है उस ब्रह्म से नहीं है.
In Buddhism, Brahma means expanded, infinite.
ब्रह्म का यहाँ अर्थ ऐसा होता है कि एक असीम ऐसा विकास.
So that these are emotions that are universal.
तो यह जो भावनाएं जो है यह वैश्विक है.
that they have no limit. That they spread throughout space. Nothing blocks them, nothing limits them. So the Buddha feels these wonderful emotions. He feels this Maitri, he feels this Karuna, he feels this Mudita.
तो बुद्ध यह मैत्री का अनुभव करते हैं, करुणा का अनुभव करते हैं और मुदिता का अनुभव करते हैं।
And he also feels the fourth of the Brahmaviharas, which is Upeksha.
और चौथा जो ब्रह्मविहार है, जिसे हम कहते हैं उपेक्षा।
Upeksha means a complete detachment.
उपेक्षा का अर्थ यह होता है कि पूरी तरह अनाशक्त होना।
It means that nothing disturbs you.
इसका अर्थ यह होता है कि कोई भी बात हमें विचलित नहीं करती।
You feel absolutely at peace with yourself and with the whole world.
आप पूर्ण तरह से गहरी शांति का अनुभव करते हैं अपने आप के लिए।
I remember our own teacher Urgyen Sangrakshi describing one of his teachers.
तो मुझे अभी भी याद है मेरे जो गुरु है उर्गेन संगरक्षित वह अपने एक गुरु की याद बताते हैं।
This is a Tibetan guru called Dujom Rinpoche.
यह एक तिब्बतन गुरु है।
Dujom Rinpoche.
Dujom Rinpoche.
He's a very famous Tibetan guru.
यह बहुत ही मशहूर तिब्बतन गुरु है।
And Urgyen Sangrakshita saw him one day many years ago in Kalimpong in West Bengal.
और Urgyen Sangrakshita जी उनसे मिले जब वो कैलिंगपोंग में जा रहे थे।
And he described to me how Rinpoche was doing some ceremony.
और वह मुझे इसका विश्लेषण दे रहे थे कि रिंपोचे एक कैसा समारोह कर रहे थे।
He was dedicating the ground for a temple, for a vihara.
एक विहार के लिए वह एक जमीन का दान कर रहे थे, उसका वह समारोह।
And he describes how he saw the Rinpoche.
और वह मुझे बता रहे थे कि कैसे उन्होंने रिंपोचे को देखा।
And he was standing absolutely still.
और वह खड़े थे पूरी तरह स्थिर।
For some minutes he was just completely still.
कुछ मिनटों के लिए वह पूरी तरह स्थिर खड़े थे।
And he said that his impression was it wasn't just a stillness of the body.
और उनका जो अनुभव था वह केवल शारीरिक स्थिरता से नहीं था।
It was a stillness of the mind.
वह मानसिक स्थिरता की बात कर रहे थे।
He said it was as if all the waves that usually disturb the surface of the mind were completely stilled.
वह ऐसा कह रहे थे कि मन की जो हमारी ऊपरी सतह है, जो अक्सर अस्थिर होती है, वह वहाँ नहीं थी, वह पूरी तरह स्थिर थे।
And he had the impression that Dujom Rinpoche was completely at peace with himself, completely at peace with the world.
और वह ऐसा विश्लेषण कर रहे थे कि रिंपोचे की जो स्थिरता थी यह अपने आप के लिए गहरी शांति थी और विश्व के लिए उनके मन में वैसी ही शांति थी।
That is upeksha.
और उसी को हम उपेक्षा कहते हैं।
It's upeksha on a very high level indeed.
उपेक्षा का यह काफी ऊंचा स्तर होता है वैसे देखा जाए तो।
And it's wonderful that such individuals live in our own time.
और यह बहुत ही अप्रतिम ऐसी बात है कि अपने समय में ऐसे लोग जीवित होते हैं।
But the Buddha experienced this upeksha.
तो ऐसी उपेक्षा का अनुभव बुद्ध करते हैं।
Nothing could disturb him.
कोई भी चीज उनको विचलित नहीं करती।
The beautiful feeling of peace, of happiness, deep, deep happiness.
यह बहुत ही सुंदर ऐसे स्थिरता का और आनंद का अनुभव होता है।
And it's a happiness that doesn't depend on anything else.
और यह ऐसा आनंद है जो किसी चीज के ऊपर निर्भर नहीं होता।
You know, you go for a meal. You go into the restaurant there.
अब आप मान लीजिए कि खाना खाने के लिए आप किसी रेस्टोरेंट में या होटल में जाते हैं।
And if it's your favorite सब्जी, you feel happy.
और आपकी पसंदीदा सब्जी वहाँ मिल गई, तो आप खुश हो जाते हैं।
If it's not your favorite, you feel disappointed.
और अगर आपकी पसंदीदा सब्जी नहीं है, तो आप नाराज हो जाते हैं।
So your happiness is dependent on sabji.
तो आपका जो आनंद है यह सब्जी के ऊपर आधारित होता है।
The Buddha's happiness is dependent on nothing.
तो बुद्ध का जो आनंद है वह किसी चीज के ऊपर निर्भर नहीं होता।
His happiness just hangs in the air like the sun in the sky.
तो उनका जो आनंद है यह आकाश में ऐसा अधांतरित होता है जैसे कि हम आसमान में सूरज देखते हैं।
It depends on nothing.
यह किसी भी चीज के ऊपर निर्भर नहीं होता।
He needs nothing to be happy.
उनको कोई भी चीज की आवश्यकता नहीं होती है स्वयं को आनंदित रखने के लिए।
Nothing can disturb his happiness.
और कोई भी चीज उनके आनंद को विचलित नहीं कर सकती।
That's upeksha.
और उसी को हम उपेक्षा कहते हैं।
This is the emotion of the Buddha.
और यही बुद्ध की भावनाएं हैं।
So yes, these four Brahmaviharas the Buddha has taken to the highest possible degree.
तो यह चार ब्रह्मविहार है जिसको बुद्ध ने क्या कह सकते हैं कि एकदम उच्चतम स्तर पे उन्होंने अनुभव किया है।
His Maitri has no barrier.
उनके मैत्री में कोई भी रुकावटें या कोई अड़चन नहीं होता।
Then his Maitri doesn't depend on him.
और उनकी जो मैत्री है यह केवल स्वयं के ऊपर निर्भर नहीं होती।
He doesn't think, well, I'll like you if you're kind to me.
बुद्ध ऐसा नहीं कहते हैं कि हाँ अगर आप मेरे साथ अच्छे हैं तो फिर मैं आपको पसंद करूंगा।
I won't have Maitri for you because you've harmed me.
मैं आपके लिए मैत्री का अनुभव नहीं करूंगा क्योंकि आपने मुझे हिंसा की है।
You remember that his cousin Devadatta tried to kill him.
अब आपको याद होगा कि जो देवदत्त उनके जो चचेरे भाई थे उन्होंने उनको मारने की कोशिश की।
But the Buddha still felt maitri for him. He felt karuna for him.
लेकिन बुद्ध ने उनके लिए भी मैत्री और करुणा का भी भाव रखा।
So his maitri, his karuna were completely beyond selfishness.
तो उनकी जो मैत्री और करुणा होती है यह निस्वार्थ होती है।
And he felt mudita.
और वह मुदिता का अनुभव लेते हैं।
You know, sometimes when we see somebody is doing well, we feel a little bit jealous.
अगर हम देखते हैं कि कोई तो भी आदमी बहुत अच्छा अगर कर रहा है तो हम जेलस हो जाते हैं।
When we, jealous, हिंदी शब्द है ईर्ष्या, ईर्ष्या,
ईर्ष्या।
Wow. But he feels mudita for me.
लेकिन मुझे सुबुदित ईर्ष्या नहीं है, मुदिता है।
So often when we see somebody's been successful, we feel some ईर्ष्या, ईर्ष्या।
तो जब हम ऐसा देखते हैं कि कोई आदमी हमसे जीत रहा है या आगे जा रहा है तो उसके प्रति हमारे मन में ईर्ष्या होती है।
But the Buddha feels nothing like that.
लेकिन बुद्ध ऐसा कुछ भी अनुभव नहीं करते।
He just rejoices in anything that anybody's done that is good.
वह इसका पूरा आनंद या उसको पुण्यानुमोदन करते हैं कि कोई भी बात अगर वो अच्छा कर रहा है।
If anybody's made any progress in their lives, he rejoices.
कोई भी व्यक्ति अपने जीवन पे अच्छा कार्य अगर करता है तो उसका वह आभार मानते हैं।
He just rejoices in any merit that anybody else creates.
कोई भी अच्छा कार्य किसी ने भी किया उसका बुद्ध पुण्यानुमोदन करते हैं।
And he feels this absolute stillness and peace of upeksha.
और यह उपेक्षा का पूरी तरह शांत और स्थिर भाव बुद्ध में होता है।
So these are the basic emotions of the Buddha's own heart.
तो बुद्ध के अपने मन की यह भावनाएं होती है।
In his case, they're taken to the highest possible degree.
लेकिन इस परिपेक्ष में यह उनके भावनाओं का उच्चतम स्तर होता है।
But we need to be developing them too.
लेकिन हमें भी इसका विकास करना आवश्यक है।
That's why we're doing the Maitri Bhavana every day now.
इसीलिए हम रोज मैत्री भावना का ध्यान करते हैं।
In fact, Dr. Babasaheb Ambedkar said that Maitri is the basis even of democracy.
बाबा साहब ऐसा कहते हैं कि लोकतंत्र का मैत्री ही बुनियाद है।
Democracy rests on liberty, equality, fraternity.
लोकतंत्र समता, स्वतंत्रता और बंधुता के ऊपर आधारित होता है।
He said democracy is not just a system of selecting a government.
वह ऐसा कहते हैं कि लोकतंत्र केवल सरकार चुनने की व्यवस्था नहीं है।
It's an attitude that one citizen has for another.
एक नागरिक के लिए दूसरे नागरिक के प्रति जो नजरिया है वह यह बात है।
It's an attitude of respect and reverence for other human beings.
दूसरे के लिए आदर भाव का या दूसरे मानवों के लिए संपूर्ण आदर भाव का यह एक नजरिया है।
That is bandhutva.
और उसी को वह कहते हैं बंधुत्व.
And without bandhutva, there's no liberty, there's no equality.
और बंधुत्व के बगैर वहाँ समता नहीं हो सकती और वहाँ स्वतंत्रता भी नहीं हो सकती.
Or rather, there's a limitation on liberty, a limitation on equality.
नहीं तो वहाँ पे सीमाएं आ जाएगी स्वतंत्रता के ऊपर और समता के ऊपर.
So if we're to have a genuine democracy, there needs to be a great deal of maitri between citizens.
तो वहाँ पे एक गहरी लोकतांत्रिक भावना की आवश्यकता होती है अगर हम अन्य नागरिकों के साथ मैत्री का भाव रखना चाहें.
After all, for instance, we want a society without any prejudice.
हम चाहते हैं ऐसा समाज जो किसी भी पूर्व धारणाओं से नहीं चले.
Ramayaji was pointing out the other night that there's prejudice in every society.
तो उस दिन वो रमैया जी बात कर रहे थे कि कैसे समाज में पूर्व धारणाएं होती है.
And to the extent that there's prejudice, there's not bandhutva.
और अगर जब तक समाज में ये पुनर्धारणाएं हैं, वहाँ पे बंधुता का विकास नहीं हो सकता.
So if we want to have a true democracy, we need to get rid of those prejudices.
अगर हमें सही मायने में लोकतंत्र चाहिए, तो इन पूर्व धारणाओं से हमें बाहर निकलना पड़ेगा.
We do that through practicing maitri.
और यह हम करते हैं अपने मैत्री का आचरण करके.
So this tradition comes down from the Buddha himself.
तो यह जो परंपरा है यह स्वयं बुद्ध से आई हुई है.
We're trying to experience for ourselves the emotion that the Buddha feels on the highest possible level.
हम भी वही भावनाओं का अनुभव अपने स्वयं के लिए करना चाहते हैं उच्चतम स्तर पे जैसा बुद्ध ने किया.
We're trying to experience this universal maitri for all beings.
तो हम इस वैश्विक मैत्रीता का अनुभव करना चाहते हैं सभी सजीवों के लिए.
And we're trying to experience karuna.
और हम करुणा का अनुभव लेना चाहते हैं.
So much suffering in this world.
क्योंकि दुनिया में बहुत दुख है.
You just need to walk down the street and you see suffering all the way.
आपको केवल रास्ते से गुजरना है और आपको दुख दिखेगा.
You'll see a lot of obvious suffering.
और आप कुछ तो भी स्वाभाविक ऐसे दुख देखते हैं.
You can see people without enough food.
आप देखते हैं लोगों को पर्याप्त मात्रा में खाना नहीं मिलता है.
You can see people with terrible illness.
आप देखते हैं लोग भयंकर रोगों से ग्रस्त होते हैं.
You can see people really deeply oppressed.
लोग हम देखते हैं कि लोग उत्पीड़ित होते हैं दबाए गए हैं.
But if you look in the faces even of wealthy people, you see suffering.
लेकिन आप अमीर लोगों के चेहरे भी देखिए वो भी दुखी है.
You see emptiness, you see strife.
उनमें वह शून्यता होती है कोई भाव नहीं होता है.
Not emptiness in that sense, nothing in, emptiness of meaning.
तो शून्यता का मतलब यहाँ अर्थ से है वो बड़ी शून्यता नहीं.
बड़ी शून्यता नहीं. So yes, you see so much suffering.
हम बहुत सारा दुख वहाँ देखते हैं.
There's so much suffering in my country.
मेरे देश में भी काफी दुख है.
Even though there's not so much suffering of a material kind.
जैसे कि भौतिक दुख है.
But many people suffer mentally.
वहाँ भौतिक दुख नहीं है लेकिन लोग मानसिक रूप से वहाँ दुखी हैं.
And karuna is the feeling that we have when we see people suffering.
और करुणा वह भावना है जब हम दुख को देखते हैं.
We want them to be free from that suffering.
और हम चाहते हैं कि वह उस दुखों से मुक्त हो.
We want to contribute to freeing them from that suffering.
और हम उनको दुख से मुक्ति देने के लिए कुछ योगदान देना चाहते हैं.
So we're trying to develop karuna.
तो हम करुणा का विकास करना चाहते हैं.
If we have maitri, karuna will naturally follow.
अगर हमारे पास मैत्री है तो निश्चित रूप से उसके पीछे पीछे करुणा आएगी.
We want to experience mudita.
हम मुदिता का अनुभव लेना चाहते हैं.
So when we see people who are happy, we want to rejoice with them.
अगर हम देखते हैं कि लोग सुखी हैं, तो हम उनका आभार व्यक्त करना चाहते हैं.
Emotion too, we try to develop.
तो यही इस भी भावना का हम विकास करना चाहते हैं.
You know, maybe your meditation has not gone so well.
अब आप जानते हैं कि आपका जो ध्यान है बहुत अच्छी तरह नहीं होता है.
You were sleeping.
अब आप सोते रहते हैं.
Or your mind was wandering.
या आपका मन इधर उधर भटकते रहता है.
And then in your group somebody talks, oh, I have wonderful visions of the Buddha and so many things.
और आपके समूह में अगर ऐसा कोई कहता है कि हाँ बुद्ध की एक बहुत बड़ी दृष्टि या ऐसा ऐसा अनुभव मुझे आया.
Well, sometimes what we think is, I think they're just making it up.
बहुत बार हम ऐसा कहते हैं कि ये अभी हमको बना रहा है.
They're not really feeling that. But we should feel, well, that's wonderful.
लेकिन हम सोचते हैं कि वाह ये बहुत अच्छी बात है.
I can't even count to one.
मैं इसमें एक भी बात नहीं हासिल कर पाता.
But it's wonderful that they're having all these wonderful experiences.
लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि उनको ऐसे अप्रतिम अनुभव आते हैं.
That's mudita.
वही मुदिता.
And this is what we should be trying to develop.
और यही बात है कि हमने अपने आप में विकास करने की कोशिश करनी चाहिए.
Not only will we make better relations with people, we will be happier.
केवल हम लोगों के साथ अच्छे संबंध ही नहीं बनाएंगे लेकिन उससे हम आनंदित भी होंगे.
Jealousy is one of the most unpleasant emotions you can feel.
ईर्ष्या एक ऐसी भावना है जो हमें दुख देती है और वैसा ही हम महसूस करते हैं.
I know it, I've experienced it.
मुझे पता है मैंने इसका अनुभव लिया है.
When you see somebody is doing well, you want to pull them down.
जब आप देखते हैं कि कोई व्यक्ति बहुत अच्छा कर रहा है तो हम उसको नीचे खींचने की कोशिश करते हैं.
It's really unpleasant.
अब ये बहुत ही दुखदायी ऐसी बात है.
It is such a common feature of social life.
और यह एक सामाजिक जीवन का ये क्या है कि सामान्य रूप है.
So we need to try to develop mudita.
तो इसीलिए हम मुदिता का विकास करने की कोशिश करते हैं.
And we need to develop upeksha.
और हमें उपेक्षा भी विकास करने की आवश्यकता है.
It's a sort of very, very positive non-reactivity.
यह बहुत ही विधायक ऐसी अप्रतिक्रियात्मक भावना है.
So that little things don't annoy us.
तो छोटी छोटी जो बातें हैं वह हमें दुख नहीं देती है.
I need to develop more upeksha myself.
मुझे भी उपेक्षा का विकास करने की आवश्यकता है.
Sometimes little things really annoy me.
कभी कभी कुछ कुछ चीजें मुझे बहुत तकलीफ देती है.
Is that true? He's been traveling with me for several weeks, so he knows all about my upeksha.
कई हफ्तों से मैं इनके साथ यात्राएं कर रहा हूं तो ये मुझे अच्छी तरह जानते हैं.
He can't say anything because he's only translating. So yes, upeksha is a sort of very positive. You don't mind what goes wrong.
तो उपेक्षा एक ऐसी भावना है कि आप अपने दिल पे कोई भी बात नहीं लेते भले ही कुछ भी हो जाए.
And so many things go wrong.
और बहुत सारी चीजें गलत हो सकती हैं.
Especially. Traveling around in India, so many things go wrong.
अगर आप भारत में यात्रा करने के लिए निकल जाओ तो बहुत सारी गलत बातें हो जाती है.
Trains are late.
ट्रेन हमेशा ही देरी से आती है.
Arrangements get forgotten.
और जो चीजें हमको व्यवस्थित करनी होती है वो वहाँ कभी नहीं होती.
Some years ago, I got to the airport to catch a plane, and it had been preponed.
कुछ महीने पहले मैं एयरपोर्ट गया था वहाँ हवाई जहाज पकड़ने के लिए और वो पहले उड़ गया.
Is it already gone when I got there?
और जब मैं वहाँ गया हवाई अड्डे पर तो वो उड़ गया था.
I'm used to them being postponed.
अब उसका मुझे अनुभव है कि वो विलंबित होते हैं.
But preponed was too much.
लेकिन अब पहले ही उड़ जाना ये कुछ मेरे लिए बहुत भारी बात थी.
And I started tearing my hair out. That's why there's none there now.
और मैंने अपने बाल नोचने शुरू किए इसलिए भी मेरे बाल नहीं.
So yes, I definitely need more upeksha.
तो निश्चित रूप से मुझे बहुत उपेक्षा चाहिए.
Upeksha, yes, you don't mind.
क्योंकि उपेक्षा ऐसा होता है कि आप कोई भी चीज दिल पे नहीं लेते हैं, आप स्वस्थ रहते हैं.
Plane is postponed.
अब मान लीजिए कि आपका हवाई जहाज है वो विलंबित हो गया.
कोई बात नहीं. Plane is preponed.
प्लेन अगर पहले ही उड़ गया
कोई बात नहीं. That's upeksha.
तो वही उपेक्षा है.
And of course it makes for a much happier life.
तो यह आपका जीवन क्या है कि बहुत खुशनुमा करता है.
So we need to be trying to develop these four brahmaviharas.
तो हमें इन चार ब्रह्मविहारों का विकास करने की आवश्यकता है.
And the Buddha had developed them to the highest possible degree.
और इन चार ब्रह्मविहारों को बुद्ध ने उच्च स्तर पर विकसित किया है.
So these are the emotions that the Buddha feels.
तो यही चार भावनाएं हैं जो बुद्ध ने महसूस.
He feels that deep gratitude even to the Bodhi tree that sheltered him.
वह गहरी कृतज्ञता का भाव उन्होंने व्यक्त किया उस पेड़ के लिए भी क्यों ना.
He feels a transcendental maitri.
और उन्होंने जो है जो क्या कह सकते हैं कि
लोकोत्तर
लोकोत्तर मैत्री का उन्होंने अनुभव किया.
A maitri that is beyond self.
वह ऐसी मैत्री जो अपने स्वयं से परे है.
And he feels karuna.
और उन्होंने करुणा का करुणा को महसूस किया.
Karuna for everyone who's suffering.
करुणा हर एक व्यक्ति के लिए जो दुखी है.
He feels mudita for those who are making progress.
उन्होंने मुदिता का भाव विकसित किया जो लोग उन्नति कर रहे हैं, प्रगति कर रहे हैं.
And he feels wonderful, deep, deep, deep upeksha.
और उन्होंने गहरी 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 ऐसे उपेक्षा का भी अनुभव किया.
So when we see that place where he sat and gazed at the tree, we remember the Buddha's emotions.
तो जब हम वो छोटी सी जो पहाड़ी है जहाँ बुद्ध बैठे हुए थे उस जगह को जब हम देखते हैं तो इन चार भावनाओं के बारे में हम सोचते हैं.
And what the Buddha experienced on the highest level, we need to experience on our own level.
तो बुद्ध ने अपने स्तर पे और उच्च स्तर पे यह जो महसूस किया है अपने स्तर पे हमें इन भावनाओं को महसूस करना है.
I just want to mention one more emotion.
मैं और एक भावना के बारे में यहाँ बताना चाहूंगा.
Although it's not strictly speaking an emotion the Buddha himself felt.
तो यह अब वह भावना मैं नहीं कहूंगा जो स्वयं बुद्ध ने महसूस की होगी.
And that is श्रद्धा.
और वह एक भावना है श्रद्धा.
This is a very, very important Buddhist emotion.
यह बहुत ही महत्वपूर्ण बौद्ध भाव है.
It's not what we might call shraddha in other religious contexts.
तो यह श्रद्धा और धर्मों के परिपेक्ष में जैसा समझते हैं वैसी नहीं है.
It's threefold.
यह तीन स्तरों पे है.
Shraddha, first of all, is a deep attraction to the Buddha, the Dhamma, and the Sangha.
श्रद्धा सबसे पहले तो वह भाव है जो हमारा गहरा आकर्षण है बुद्ध धम्म और संघ के प्रति.
It's a bit like a magnet.
ऐसा मान लीजिए कि जैसा कोई यह चुंबक हो.
You know, you put two pieces of metal, magnetized metal, close to each other.
अब दो चुंबकीय तत्व अगर हम आपस में लाते हैं.
And they're drawn together.
वो एक दूसरे की तरफ खींचे चले आते हैं.
You can't keep them apart.
आप उनको अलग नहीं कर सकते.
You put them at one side of a table and they just race together.
अगर आप किसी मेज पे या दो चुंबकीय तत्व चुंबक रखिए ये खींचे चले आते हैं.
It's as if there's something in us that draws us towards the Buddha.
तो हमें ऐसी कोई एक बात होती है जो बुद्ध की तरफ हमें खींचते ले जाती है.
It's as if there's something deep in us that is deep in the Buddha.
ऐसे ही कुछ भाव है जो हमारे मन में गहरे होते हैं बुद्ध के लिए.
As soon as we see the Buddha, we know this is what we want to be.
जैसे ही हम बुद्ध को देखते हैं हम यह महसूस करते कि हाँ ऐसा ही कुछ मैं बनना चाहता हूँ.
I've been talking about the qualities of the Buddha.
मैं बुद्ध के गुणों के बारे में बात कर रहा था.
I've been talking about the Buddha's emotions.
मैं बुद्ध की भावनाओं के बारे में बात कर रहा था.
And I can see on your faces shraddha arises.
और मैं आपके चेहरे पे यह देख रहा था कि वह श्रद्धा का भाव छलक रहा था.
When you hear these wonderful qualities of the Buddha, well, you want them, you're drawn to them.
जब हम बुद्ध के ऐसे भावनाओं के बारे में सोचते हैं तो हम देखते हैं कि हम भी वैसा ही बनना चाहते हैं.
You don't think about it.
हम इसके बारे में सोचते नहीं है.
You're just naturally drawn to them.
निसर्गतः हम उसके तरफ खींचे चले जाते हैं.
And this is faith.
और यही है श्रद्धा.
You're drawn naturally from deep within you to the highest in the universe.
निसर्गतः हम ऐसे विश्व के उच्च आदर्श के तरफ खींचे चले जाते हैं.
But this is only part of shraddha.
लेकिन यह श्रद्धा का केवल एक हिस्सा है.
Shraddha is also a strong response to the truth.
श्रद्धा सत्यता के प्रति एक गहरा रिस्पॉन्स को क्या कहते हैं प्रतिसाद है.
When you hear the Dhamma, you know this is true.
जब हम देखते हैं धम्म को तब हम यह देखते हैं कि यही सत्य है.
You feel it in your bones.
हम अपने आप में यह महसूस करते हैं.
The Buddha says all conditioned things are impermanent.
बुद्ध कहते हैं कि सभी चीजें अनित्य हैं.
And you know this is true.
और हम यह जानते हैं कि यह सत्य है.
Yes, you think about it, you test it.
हम इसके बारे में सोचते हैं, हम इसकी परीक्षा करते हैं.
But you feel it deeply.
और हम गहराई से इसे महसूस करते हैं.
Your response is very strong to the truth of the Dhamma.
हमारा जो प्रतिसाद है यह सत्य के प्रति धम्म के प्रति बहुत मजबूत होता है।
I remember the first time I heard the Dhamma.
मैं अभी भी याद करता हूँ जब मैंने पहली बार धम्म को सुना।
And when I heard it, I thought, well, this is what I really think, although I don't know that I think it. This is what I really think, although I don't really know. I didn't really know that I thought it.
यही कुछ ऐसी बात है जिसको मैं सोचना चाहता हूँ, जिसके बारे में मैंने पहले कभी सोचा नहीं है.
Of course, yes, it was the first time I'd heard it.
निश्चित रूप से मैंने पहली बार ही इसे सुना था.
But it felt deeply familiar.
लेकिन मुझे गहरी इसके साथ एकरूपता महसूस हुई.
Our teacher Urgyen Sangrajta speaks about this.
Urgyen Sangrajta ji, जो हमारे गुरु है, इसके बारे में बात करते हैं.
He read when he was 16 a very important, very lofty Buddhist scripture.
जब वो 16 साल के थे, तब उन्होंने एक बुद्ध सूत्र पढ़ा था.
It's called the Vajracchedika Prajna Paramita Sutra.
यह है वज्रच्छेदिका प्रज्ञा पारमिता सूत्र.
It's famous because Subhuti comes in it.
यह इसके लिए मशहूर है क्योंकि वो Subhuti को बताया गया था.
Not this Subhuti, I'm afraid.
वो यह Subhuti नहीं थे.
But anyway, when Urgyen Sangrajta read this Diamond Sutra, he immediately knew that it was true.
लेकिन जब संग्रक्षित जी ने इस सूत्र को पढ़ा, उन्होंने तुरंत जाना कि यह सत्य है.
And he said he knew that he was a Buddhist and that he always had been.
वह उन्होंने महसूस किया कि मैं बौद्ध हूँ और हमेशा से ही मैं बौद्ध रहा हूँ.
So this is faith again.
तो यही श्रद्धा है.
It's an immediate response to the truth.
यह हमारा तुरंत प्रतिसाद है सत्य के प्रति.
Your intellect, your reasoning tests that.
आपके जो कारण है, आपका जो बुद्धिवाद है, इससे हम इसकी परीक्षा करते हैं.
But the response is direct, immediate.
आपका जो प्रतिसाद है इस अर्थ के लिए सीधा होता है, प्रत्यक्ष होता है.
And then there's a third aspect of faith.
अब श्रद्धा का तीसरा एक आयाम.
It's belief in yourself.
यह अपने आप में विश्वास.
It's belief that you can attain what the Buddha attained.
यह ऐसा विश्वास है कि आप भी वह हासिल कर सकते हैं जो बुद्ध ने हासिल किया है.
Without that element, it's not Buddhist faith.
अगर ऐसा भाग अगर उसमें नहीं है, तो फिर वो बौद्ध श्रद्धा नहीं होती है.
You could say that in many religions was the first aspect of faith.
बहुत सारे धर्मों में हम यह देखते हैं कि श्रद्धा का यही पहला आयाम होता है.
There's a sort of response to something higher.
कोई तो भी ऊंची जो चीज है उसके लिए एक प्रतिसाद होता है.
But there's no truth, there's no clarity.
लेकिन उसमें स्पष्टता नहीं होती है, उसमें सत्यता नहीं होती है.
And there's no recognition of your own capacity to realize.
और आपके अपने क्षमताओं के साथ इसकी पहचान नहीं होती है.
Sometimes we get this in Buddhism too.
बहुत बार यह हम बौद्ध धर्म में भी देखते हैं.
We respond to the Buddha, but we don't try to become the Buddha.
हम बुद्ध को प्रतिसाद तो करते हैं, लेकिन बुद्ध के जैसे होने की कोशिश नहीं करते हैं.
So shraddha is the fuel that takes us towards the Buddha.
तो श्रद्धा यह एक ऐसा ईंधन है जो बुद्ध के पास आपको ले जाता है.
And when we've been down at the Bodhi tree, I'm sure that we've all been experiencing quite a bit of shraddha.
तो जब हम बोधि वृक्ष के नीचे बैठते हैं, तो ऐसे ही श्रद्धा का हम अनुभव करते हैं.
And this is really the sixth Buddhist emotion.
और यह छठी बौद्ध भावना है.
So these six emotions we need to try to develop.
तो यह छह भावनाएं हैं जिसका हमने विकास करने की कोशिश करनी है.
I'm sure we experience them already.
मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों ने शायद इसका अनुभव लिया हो.
But we need to extend them and develop them.
लेकिन इसको हमें आगे बढ़ाना है, इसको हमें विकसित करना है.
We need to be more and more grateful.
हमें बहुत ही कृतज्ञ होना है.
Grateful to everybody who's helped us.
जिन लोगों ने हमें मदद की है, उनके प्रति हमें कृतज्ञता का भाव विकसित करना है.
Grateful to our parents.
हमारे माता पिताओं के प्रति हम कृतज्ञ रहें.
Grateful to our teachers.
हमारे गुरुओं के प्रति हम कृतज्ञ रहें.
But especially grateful to the Buddha.
निश्चित रूप से विशेषतः हम बुद्ध के प्रति कृतज्ञ रहें.
And grateful to everyone who helps us to understand the Buddha's message and practice his teaching.
और हर उस व्यक्ति के लिए हम कृतज्ञ रहे जिसने हमें बुद्ध का संदेश, उनकी शिक्षाएं समझने के लिए मदद की है.
Then we need to experience the four Brahma Viharas.
और हमें चार, ये जो ब्रह्म विहार है, उसको अनुभव करने की आवश्यकता है.
We need to experience maitri, karuna, mudita and upeksha.
हमें इन चार भावनाओं को अनुभव करने की आवश्यकता है, मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा.
And if we experience these, well, we'll be very, very happy.
अगर हम इसका अनुभव करते हैं तो हम बहुत ही आनंदित हो जाएंगे.
And we'll be able to be proper members of an ideal society.
और तभी हम एक आदर्श समाज के सही मायने में सदस्य होंगे.
We will contribute to making society free from all kinds of prejudice.
और हम उसमें गहरा योगदान करेंगे आदर्श समाज बनाने के लिए जिसमें कोई भी पूर्व धारणाएं नहीं होगी.
And then we need to experience श्रद्धा.
और फिर हमें श्रद्धा का भी अनुभव करना है.
श्रद्धा lifts us up.
श्रद्धा हमेशा ही हमें ऊंचा उठाती है.
It lifts us beyond ourselves.
हमें अपने आप से यह ऊंचा उठाती है.
It lifts us into higher and higher states of being and consciousness.
हमारी चेतनाओं से या सजीवों के प्रति बहुत ही ऊंचे स्तर पे श्रद्धा हमें ले जाती है.
It lifts us towards the Buddha.
यह हमें बुद्ध के तरफ ले जाती है.
And then we will experience all these emotions on a higher level, the highest level possible.
तो संभवतः जितना भी ऊंचा स्तर है इन भावनाओं का तब हम महसूस कर पाएंगे.
And we ourselves will sit on that little hill.
और फिर हम स्वयं उस छोटे सी जो पहाड़ी है उस पर बैठेंगे.
We will look back at the Bodhi tree.
हम देखने की कोशिश करेंगे बोधि वृक्ष को.
We will sit for 1 week.
हम एक हफ्ते के लिए वहां बैठेंगे.
Just gazing without blinking at the tree.
अपनी पलक बिना झपकाए उस बोधि वृक्ष को देखेंगे.
And just feeling deep, deep gratitude.
और गहरी गहरी कृतज्ञता का हम तब अनुभव करेंगे.
नमो बुद्धाय. जय भीम.